તારીખ 30/9/1988 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 420 અને 421 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 373
પૃષ્ઠ 192 પ્રશ્ન ઉઠાયા હે જીવનાશ કો 2400 ઘંટે આત્મા કે વિચાર ચલતે હૈ ક્યા જિજ્ઞાસુ મેને મુમુક્ષુ જિજ્ઞાસુ મેને કૈસા હૈ એસા નિશ્ચિત કરને કી જિજ્ઞાસા હૈ ઉસકા અનુભવ કૈસે કરે એસી જિસકો જિજ્ઞાસા હૈ ભાવના હૈ ઉસકો જિજ્ઞાસુ કહેતે હૈ સામાન્ય તૌર સે અપન મુમુક્ષુ કહેતે હૈ મુમુક્ષુ કહો જિજ્ઞાસુ કહો એક અર્થ મેં પ્રશ્ન એસા ઉઠાયા હૈ કે ક્યા 24 ઘંટો ઉસકો આત્મા કા વિચાર ચલતા હૈ ક્યા યાને એસા હી હો એસા કોઈ સિદ્ધાંત હૈ એસા કોઈ નિયમ હૈ એસા હૈ ક્યા એસા પ્રશ્ન હૈ ઉત્તર દેતે હૈ કે વિચાર 2400 ઘંટો નહીં ચલતે ક્યા કારણ હૈ ઇસકા કે અનેક પ્રકાર કે પૂર્વકર્મ કે ઉદય કે સાથ સંસાર કે અનેક પ્રકાર કે કાર્ય ભી હોતે હૈ ઉસ પ્રકાર કે સંયોગ ખડે હોતે હૈ ઓર અનેકવિધ કાર્ય કે સાંસારિક જીવન કી જો આવશ્યકતાએં હૈ જરૂરત હૈ ઉસકે મુતાબિક ખાના પીના ઓર ભી દૂસરે દૂસરે કામ કરના ઉસમે સબ જગહ વિચાર લગતા હૈ ઉપયોગ લગતા હૈ તો એસા તો હોતા હી હૈ ઇસલિયે એસા કોઈ સિદ્ધાંત નહીં એસા કોઈ નિયમ નહીં કે 2400 ઘંટો વિચાર આત્મા કા હી ચલે એસા બહુ શરૂ કી ભૂમિકા મેં એસા નહીં હોતા હૈ ઓર બાદ મેં ભી દૂસરે દૂસરે ઉદય કે સાથ જહાં તક ઉદય હૈ વહાં તક તો ઉપયોગ કા જોડાણ હોઈ જાતા હૈ પરંતુ ભલે હી 2400 ઘંટો વિચાર નહીં ચલે પરંતુ આત્મા કા ખટકા આત્મા કી લગન ઓર આત્મ સ્વભાવ કી રુચિ ઓર ઉસ તરફ કે પરિણામ મેં ઉત્સાહ બના રહેતા હૈ યે હમેશા રહેતા હૈ યાને યે 2400 ઘંટો રહેતા હૈ યે વાત લી હૈ પરિણતિ કી વિચાર કા વિષય લિયા ઉપયોગ કા ઓર યે વાત લી પરિણતિ કી અગર જિજ્ઞાસુ કો તીવ્ર ભાવના હો મુમુક્ષુ કો તીવ્ર ભાવના હો તો ઉસી પ્રકાર કે પરિણામ કી એક પરિણતિ બન જાતી હૈ યે કહેને કા અભિપ્રાય હૈ કે મુજે મેરા આત્મા કા અનુભવ નહીં મેરી આત્મા કી સુખ શાંતિ કા અનુભવ નહીં ઇસકે લિયે ઉસકી ખટક ખટકા કહેતે હૈ કે ક્યા મુજે મેરી શાંતિ સે મેં દૂર હું મેરી શાંતિ તો મુજે અવશ્ય ચાહીએ હી ચાહીએ એસા એક અપના કાર્ય સંપન્ન નહીં હુઆ હૈ ઇસકા યે ખટકા હૈ અપને કો શાંતિ નહીં મિલ રહી હૈ ઇસકા યે ખટકા હૈ ઓર અપના કાર્ય સંપન્ન કરને કે વિષય મેં લગન સોનગઢ મેં પઢા થા દૂસરા બોલ પઢા થા લગન કે વિષય મેં ઇસ ગ્રંથ કે પ્રારંભ મેં દો નંબર કા બોલ હૈ યહી વિષય કા હૈ उसके आत्मार्थ की या मुमुक्षु की सही भूमिका कैसे होती है, भूमिका मैंने योग्यता कैसे होती है, तो उसमें ये बात ली है कि अंतर की गहराई से मैंने तीव्र परिणाम से, अंतर की गहराई को और सादी भाषा में कहो तो तीव्र परिणाम से आत्मा की सच्ची लगन लगे, आत्मा की सच्ची लगन लगे, ऐसा एक विशेषण लगा है, लगन नहीं लिया, सच्ची लगन लगे, तो उसकी आत्म लगन ही उसे मार्ग कर देगी। ऐसे कई मुमुक्षु प्रश्न करते हैं कि मार्ग का पता नहीं मिलता है, बात तो समझ सकते हैं, बुद्धि का विषय बराबर होता है, लेकिन भीतर में अंतर्मुख होने का जो मार्ग है वो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है इसका ये सीधा उत्तर है कि उसको तो उसकी आत्म लगन ही मार्ग कर देगी। मार्ग नहीं मिलता है तो भी मार्ग कर देगी ये आत्म लगन, मार्ग हो जाएगा इसका मतलब ये है, मार्ग नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बनेगा, ये दूसरे बोल में गारंटी दिया है इसका। ये भी क्रिया तो लगन का ये लक्षण दिखाया है कि अगर लगन सच्ची है तो उसका अपना परिणाम में जागृति विशेष रहती है, और सही लगन है, सच्ची लगन है, तो उस लगन में उसको ऐसा भाव रहता है, इस प्रकार का भाव रहता है कि मुझे इस कार्य करना ही है, इस कार्य को किए बिना मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं, कर ही लूंगा, ऐसा उत्साह आता है, उत्साह शब्द लिया है ना, उत्साह, ऐसा उत्साह लिया है कि इस कार्य को, मेरी आत्म शांति का कार्य को मैं करके ही रहूंगा, कभी इस कार्य को मैं छोड़ने वाला नहीं, ऐसा एक उत्साह जिज्ञासु को बना रहता है, बना रहता है, यही बताता है कि उसमें कृत्रिमता नहीं है, कोई विचार कर करके ऐसी बात का जोर करना पड़ता है ऐसी बात नहीं है, सहज रूप से अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा वश सहज रूप से ऐसा बना रहता है, और रुचि, गुण की रुचि, स्वभाव की रुचि, शांति की रुचि, सुख की रुचि, आत्मिक सुख की रुचि प्राप्त करने की तीव्र भाव, रुचि में तीव्रता आती है, उसको रुचि कहते हैं, और उसका भी एक लक्षण ऐसा है, रुचि कहते हैं इसका लक्षण ऐसा है कि उसके बिना चले नहीं, ये रुचि का लक्षण है कि उसके बिना जैसे चले नहीं, मुझे नहीं चलेगा, जैसे प्यास लगी तो पानी बिना चले नहीं, उसमें कोई नमकीन मिष्ठान जो है वो नहीं चल सकता, पानी ही पानी चाहिए, वैसे रुचि को शास्त्र में प्यास की उपमा, तृषा की उपमा दी जाती है, एक तृषा जैसी चीज है, तीव्र प्यास लगती है तो चाहिए ही चाहिए, ऐसे आत्मिक सुख शांति, प्रयोजन तो यही है सभी जीवों का कि आत्मिक सुख शांति चाहिए और इसके बिना नहीं चले, बाहर के कितने भी संयोग की अनुकूलता में उसको शांति मिलती नहीं है, शांति लगती नहीं है, मिलती नहीं है मतलब लगती नहीं है, और आत्मा में से शांति हुए ऐसा तीव्र भाव रहता है, प्यास जैसा, उसको रुचि कहते हैं। ये मुमुक्षु की यथार्थ योग्यता के लक्षण बताए हैं कि भले ही उसको अन्य अन्य कार्य में विचार करना पड़े, उपयोग देना पड़े, योगदान देना पड़े, जैसे अपने सादी भाषा में कहते हैं कि योगदान देना पड़ता है, ऑफिस में जाना, घर के परिवार का काम करना, दूसरे खाना पीना, शरीर आदि के संबंध में जो भी जितना भी व्यवहार है जीवन में बाह्य जीवन का, उसमें विचार चलता है, उपयोग लगता है, परंतु ऐसा करके लेते हैं कि मेरी चीज मुझे प्राप्त नहीं है, मेरी शांति मुझे प्राप्त नहीं है, ऐसी लगन, ऐसी रुचि, ऐसा उत्साह बना रहता है, सहज रूप से ये परिणाम परिणति में चलता है, ऐसी परिणति एक दफे हो जानी चाहिए। पूज्य बहन श्री प्रत्यक्ष चर्चा में इस बात को ऐसे कहते हैं कि मुमुक्षुओं को परिणति बन जानी चाहिए। जब ये प्रश्न सामने आता है कि हम कई साल से इस तत्व ज्ञान का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न आता है कि परिणति नहीं बनी। मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को ऐसी परिणति बन जानी चाहिए। तो परिणति कैसी है, इसका अवतरण चिन्ह में एक वचन लिया है कि मुझे आत्मा का करना है, मुझे आत्मा को पहचानना है, क्योंकि पहले तो पहचान बाकी है, मुझे आत्महित करना है, आत्मा का करना है, मैंने आत्मा का हित करना है, हित शब्द है, वो अध्यार है, हित कहो, आत्मा का सुख कहो, आत्मा की शांति कहो, सभी एक बात है। और कई मुमुक्षु शुरू से ही ये चाहते हैं कि आनंद तो होता नहीं है, आनंद तो आता नहीं है, करे क्या, कल चर्चा चली ना, तो उसका अट्रैक्शन नहीं है तो क्या करे, इसका अट्रैक्शन नहीं है तो बाहर में सुख है, अनुकूलता में सुख है, इच्छित वांछित पदार्थ में सुख है, ये आकर्षण तो है ना, तो इसमें वास्तव में क्या सुख होता है, इसकी तो कोई तलाश करे नहीं, इसका कोई अवलोकन करे नहीं, उसमें आकुलता होती है या निराकुलता होती है, सुख और दुख का तो यही भाव है कि सुख तो इसको कहें कि जो निराकुल परिणाम है उसको सुख कहें, और आकुलतामय जो परिणाम है उसको दुख कहें। तो दूसरे दूसरे पदार्थ जुटाने में दुख होता है, उसको तो देखे नहीं, और अंदर का आनंद, आत्मा का आनंद दिखता नहीं, क्या करें, लेकिन ऐसा कैसे दिखेगा, ऐसे कोई आत्मा का आनंद दिखने वाला नहीं है। पहले तो ऐसी लगन, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे मेरे आत्मा का हित करना है, गुण से उत्पन्न होने वाला सुख, गुण से उत्पन्न होने वाला सुख हो या स्वभाव से उत्पन्न होने वाला सुख हो, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख हो, सब एक ही बात है। मुझे आत्मा का करना है और मुझे आत्मा को पहचानना है, मेरा मूल स्वरूप आत्मा, मैंने मेरा मूल स्वरूप, मेरा असल स्वरूप, उसकी पहचान मुझे करनी है। इस मूल स्वरूप मैंने असल स्वरूप, अभी जो कर्मजनित अवस्था है ये आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, ये शरीर जैसा मैं दिखता हूँ, लोग मुझे इस नाम से पहचानते हैं, मेरे परिवार में मेरा यही स्थान है, या मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, या समाज में मेरा यही स्थान है, हिंदुस्तान का मैं भारतवासी हूँ, भारत का मैं भारतवासी हूँ, ये सब कर्म के उदय से हुई अवस्था है, ये आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। मूल स्वरूप इसलिए नहीं है कि ये स्वरूप हमेशा ऐसा नहीं रहता, कुछ काल तक रहता है और फिर आयु पूर्ण होने के बाद जीव दूसरी अवस्था, अपने पूर्व कर्म के वश दूसरी अवस्था को धारण करता है। चार गति में कभी देव होता है, कभी तिर्यंच पशु पक्षी होता है, कभी नारक होता है, कभी मनुष्य होता है। लेकिन ये चारों गति में किसी भी प्रकार की अवस्था जीव का मूल स्वरूप नहीं है। इसलिए ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे मेरे आत्मा की पहचान करना है, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। मूल स्वरूप वैसा का वैसा रहता है कहीं भी जाओ, और इसके लिए ये बात अंधेरे में नहीं रखी। सत्पुरुषों ने ये बात प्रसिद्ध कर दी जिसने इस स्वरूप को जाना पहचाना अनुभव किया, उन्होंने ये प्रसिद्ध कर दी कि तू हे आत्मा, तू देहादि स्वरूप नहीं है, तू रागादि स्वरूप नहीं है। इससे आगे ले लिया कि तेरी अवस्था रागमय तुझे अनुभव गोचर होती है, मैंने तेरा स्वरूप तुझे रागमय अनुभव गोचर होता है, ये भी तेरा असल स्वरूप नहीं है, तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये बतला दिया है, दिखला दिया है कि तू ज्ञान स्वरूप एक आत्मा है और कुछ तू कुछ नहीं है। इसके सिवा जितने भी प्रकार के भाव तुझे हो कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, ये सब मूल स्वरूप को भूल करके, ज्ञान स्वरूप आत्मा को भूल करके एक अन्यथा विपरीत मान्यता बना रखी है अपने आप के विषय में, और यही मान्यता नए नए जन्म और मरण होने का मूल कारण, जड़ जो है वो यही मान्यता है। इसलिए यहाँ ऐसा लिया है कि मुझे आत्मा को पहचानना है, तो पहचानना है इसमें ये बात मुमुक्षों को होती है कि जब सत्पुरुषों ने ये कहा, वो अनंत तीर्थंकरों ने कहा, कि तेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अगर तेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो इसकी पहचान मतलब ऐसा लगे नहीं, सादी भाषा में कहे, शास्त्र भाषा में उसको भाव भाषण कहते हैं, लेकिन बिल्कुल घरेलू भाषा में कहें तो ये बात है कि जहां तक वैसा लगे नहीं वहां तक पहचान नहीं है। जैसे अन्यथा मान्यता में ऐसा लगता है कि मैं फलाना फलाना मनुष्य हूं, ऐसा लगता है, ये 24 घंटों लगता है या जब विचार करे तब लगता है कि इसकी परिणति हो गई है, तो मैं फलाना मनुष्य हूं ऐसा 24 घंटों लग ही रहा है। उसका स्मरण करने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि उसका विस्मरण कभी होता नहीं, स्मरण तो इस बात का करना पड़े कि जिसकी विस्मृति हो जाए उसको स्मृति में लाना पड़े, लेकिन जिसकी परिणति हो जाती है उसमें स्मरण होने का सवाल नहीं रहता, स्मरण करने का सवाल नहीं होता। स्मरण करे तब वो स्मरण में रहे वरना भूल जाए, ऐसी बात नहीं होती। जो मूल स्वरूप हूं सो हूं, मूल स्वरूप की बात है कि मेरे संतान में, मेरे ज्ञान में मेरे मूल स्वरूप ऐसा जम गया है कि चाहे अवस्था में निगोद हो, चाहे वर्तमान मनुष्य हो, चाहे सिद्ध पद की अवस्था हो, मेरा मूल स्वरूप में किंचित मात्र हीनता नहीं होती न कुछ अधिकता होती है। यानी वर्तमान अवस्था का लाभ नुकसान मूल स्वरूप में नहीं है, ऐसा लिया है, ऐसी परिणति हो जानी चाहिए। पहचान के बाद ये परिणति हो जाती है, क्योंकि मूल स्वरूप की जहां तक पहचान नहीं होती है वहां तक स्वरूप के विषय में परिणति नहीं बनती। तो उसके पहले कैसी परिणति बननी चाहिए कि उसके पहले आत्मा का खटका, आत्मा की लगन, आत्मा की रुचि और उत्साह बना रहना चाहिए। बहुत क्लियर लाइन है ये, प्रारंभ से लेकर के क्या क्या होना उस बात, सब बात अपने अनुभव से सत्पुरुष बता चुके हैं। तब तो मिलान करने की बात है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। कृत्रिमता से तो किया नहीं जाता, और कृत्रिमता से किया जाता है उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे कोई जबरन प्रीत नहीं होती, जबरदस्ती से जबरन कोई प्रीत नहीं होती, तो ये तो सुख शांति का की लगन है, प्रेम है, वो कोई जबरदस्ती से होने वाली, कृत्रिमता से करने वाली तो चीज नहीं है। मुझे आत्मा का करना है, मुझे आत्मा को पहचानना है, इस प्रकार का लक्ष्य मैंने अपने कार्य का, ध्येय का, प्रयोजन का लक्ष्य, इस प्रकार का लक्ष्य मैंने अपने प्रयोजन का लक्ष्य बारंबार आत्मा की ओर मुड़ता रहता है। अपने प्रयोजन का लक्ष्य एम लक्ष्य आत्मा तरफ बारंबार व्या करे, लक्ष्य के अनुसार ऐसा परिणाम में, उपयोग में, विचार में भी ऐसा बार बार आया करता है। परिणति हमेशा रहती है, लेकिन परिणति के अनुसार उपयोग में भी ऐसा विचार आया करेगा, ये बार बार आता रहेगा। ये विचार ही परिणति हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि विचार आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं, बार बार आएगा। ये जितनी परिणति तीव्र होगी उतना उपयोग बार बार आता रहेगा। ये परिणति और उपयोग का मेल है, यानी अनुसंधान है। इस प्रकार लक्ष्य बारंबार आत्मा की ओर मुड़ता रहता है, देखिए ये भी परिणमन की बात नहीं। ऐसा नहीं कहा कि ऐसा विकल्प और विचार होता रहेगा, मुड़ता रहेगा, ऐसा शब्द लिया है गुजराती में, ऐसा लिया है कि एम लक्ष्य आत्मा तरफ बारंबार व्या करे। तो ये विचार विकल्प की सिर्फ परिस्थिति नहीं रही, ऐसा बलन हो जाए, ऐसा बढ़ने का हो जाए कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा काम करना है, एक उत्साह बना रहे, उसकी लगन बना रहे, ऐसा बार बार लक्ष्य हो गए तो इसमें भी ऊपर ऊपर के विचार विकल्प नहीं है, ऐसा कोई ध्वनि है तो ऐसा है इसमें। मैंने लक्ष्य ऐसी चीज है कि जहां तक लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो गए वहां तक इस विषय में बार बार इसी ओर का एक झुकाव लक्ष्य के साथ बढ़ना, मैंने इसका ऐसा कोई परिणाम में झुकाव हो जाना, ऐसा वो वजन बताता है इस विषय में। सामान्य तौर से कोई विचार चले एक बात है, और कोई उसका वजन होकर के झुकाव होवे वो दूसरी बात है, ऐसी बात है। झुकाव होता है उसमें क्या है कि विरुद्ध जो परिणाम है उसकी असर इतनी पहुंचती नहीं है, जो झुकाव वाले परिणाम की असर पहुंचती है। जैसे अपन कहते हैं कि फलाना आदमी अपनी बात की हाँ भरता है लेकिन अभी उसका झुकाव नहीं बदला, तो इसका जो वजन है वो वहां का वहां है, ऐसा हो जाएगा। तो एक एक बात जो है बहुत अनुभवपूर्ण लिखी है। मुमुक्षुओं को तो वर्तमान कार्य कैसे होए और जहां वो खड़ा है वहां से वो कैसे अपने प्रयोजन की दिशा में आगे बढ़े उसकी बिल्कुल इतनी सचोट बात है ये कि ये होना, ये होना, ये होना, ऐसा होए तो आगे बढ़े बढ़ेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नाम मात्र मुमुक्षुता रह जाएगी, कोई काम होने वाला नहीं है। काम नहीं हो गए वो तो वर्तमान की बात रही, लेकिन आगे जाके हालत बहुत खराब है। अभी तो इतना नहीं दिखे कि इतना हम दुखी नहीं है, इतना हम कोई तकलीफ नहीं है, इतनी कोई आपत्ति नहीं आई है, लेकिन ये चीज हमेशा नहीं रहने वाली है, ये बहुत क्षणिक है, बहुत करके इस भाव में कभी किसी को इतनी कोई विपत्ति नहीं होती है, लेकिन भवांतर में तो फिर कोई ऐसी दुर्गति हो ही जाती है क्योंकि वर्तमान प्राप्त संजोग में जो रस लिया, अनुकूलता में जो रस ले लिया, उसमें जो पाप के परिणाम के अनुबंध हुए, पाप के परिणाम से जो अनुबंध हुए, इससे नियम से अधोगति होती ही है। और इस अधोगति में फिर आत्महित का कोई विचार की सूझ नहीं रहती है, विचार नहीं रहता है, और क्रमशः नीचे नीचे की गति जीव प्राप्त करता है, निगुण तक चला जाता है। इसलिए जहां तक सब ठीक है, कोई इतनी उपाधि, इतनी चिंता ऐसा कुछ नहीं है, और दिमाग कुछ साफ है विचार करने के लिए, इस परिणाम की इस क्षमता के काल में शीघ्रतया कैसे हित हो जाए, इस विषय पर जरा जोर से, उत्साह से आगे बढ़ने का होना ही चाहिए। ये 420वां में एक दूसरा प्रश्न दिया है कि मुमुक्षुओं को शास्त्र अभ्यास और चिंतन, तत्व ज्ञान के विषय का चिंतन जो है, दो प्रकार की जो तत्वज्ञान विषयक प्रवृत्ति है, उसमें कौन सी प्रवृत्ति में अधिक समय लगाना है, ये प्रश्न पूछा है। मुमुक्षु को शास्त्र का अभ्यास विशेष रखना या तत्व चिंतन में विशेष समय लगाना, विशेष समय कहाँ देना, किस प्रवृत्ति में विशेष समय हम लगावें, ऐसा एक प्रश्न किया है। और प्रश्न में ये बात स्वयं आ जाती है कि इसके अलावा कोई दूसरी प्रक्रिया में समय लगाना के नहीं लगाना, ये तो प्रश्न ही नहीं किया है कि हम अधिकतर पूजा भक्ति करते रहें, हम तीर्थ वंदना करते रहें, या हम पंचवर्मिष्ठी के नाम स्मरण जाप करते रहें, या दया दान करते रहें, या व्रत उपवास करते रहें, ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं किया है। ये प्रश्न में स्वयं है कि जब स्वरूप अनुभव नहीं हुआ है तो सबसे पहले मुमुक्षुओं को दूसरी की क्रिया में अपने समय और शक्ति को लगाना नहीं चाहिए। एक शास्त्र अध्ययन जिसमें स्वरूप का विचार है, आत्मा का विचार है, और जिसमें चिंतन जिसमें भी आत्मा का विचार है, दो प्रकार का होता है। एक में निमित्त साथ है, एक में निमित्त साथ नहीं है। भीतर की प्रवृत्ति तो दो प्रकार की नहीं है। भीतर की प्रवृत्ति में तो आत्मा कैसा है उसको पहचान करना है, और आत्महित कैसे हुए यही भावना रहती है। तो उस भावना और इस पहचान करने की अंतर खोज, इसके अनुसार हम शास्त्र पढ़े ज्यादा या हम चिंतन करें ज्यादा, बस ऐसा प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर दिया, ज्यादा या हम चिंतन करें ज्यादा, बस ऐसा प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर दिया, यही भावना रहती है। तो उस भावना और इस पहचान करने की अंतर खोज, इसके अनुसार हम शास्त्र पढ़े ज्यादा या हम चिंतन करें ज्यादा, बस ऐसा प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर दिया, शास्त्राभ्यास चिंतन सहित होता है और चिंतन शास्त्राभ्यास पूर्वक होता है। देखिए कितना अनुभवपूर्ण प्रैक्टिकल साइड है ये उत्तर दिया है कि सभी मुमुक्षुओं को शास्त्राभ्यास चले और शास्त्र अध्ययन के काल में चिंतन नहीं चले और पढ़ते ही जाएं, ऐसा शास्त्राभ्यास तो सामान्य तौर से सही मुमुक्ष को होता ही नहीं। मैंने अपनी खुद की वो बात देख लेते हैं भूतकाल की कि हमारा शास्त्र अध्ययन कैसे चलता था, कि शास्त्र अध्ययन के साथ चिंतन बढ़ता था, चिंतन चालू रहता था, मैंने पढ़ते पढ़ते चिंतन में आ जाते थे, रह जाते थे, पढ़ते ही जाएं। जैसे कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो क्या है कि पढ़ते जाते अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यही वो तो सस्पेंस में रखते हैं ना। एक उपन्यास लिखने में ये सबसे बड़ी टेक्निक है, लिखने की कला है ये, कि वो पढ़ने वाले को बात तो सीधी सादी होती है फिर भी उसको सस्पेंस में रख देते हैं, तो क्या है कि वो ज्यादा विचार नहीं करे, जल्दी 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 आगे की बात पढ़ने के लिए आतुर रहता है, पढ़ता जाता है। शास्त्र अध्ययन ये जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वो वैसे नहीं पढ़ा जाता है, वो तो सामान्य अपेक्षा से सही मुमुक्षु को शास्त्र अभ्यास चिंतन सहित ही होता है। चिंतन होवे ही होवे, उसमें बिना चिंतन बिना मंथन शास्त्र पढ़ लेने ये शास्त्राभ्यास करने की सही पद्धति भी नहीं है। देखिए क्या मार्गदर्शन है इसमें। और चिंतन शास्त्राभ्यास पूर्वक होता है। अब जो चिंतन करता है तो मिलान करता है कि जैसा मेरा चिंतन चलता है भीतर में, शास्त्र में इस विषय कहाँ है और इस विषय की गहराई शास्त्रकार मैंने अनुभवी पुरुष कहने वाला अनुभवी जीव उसने इस विषय की गहराई में कौन से शब्द से कितने गहरे भाव इस विषय के दर्शाए हैं, ऐसा वो चिंतन है वो शास्त्राभ्यास पूर्वक करता है। दोनों बात होती ही रहती है। कोई ऐसा कहे, कोई मुमुक्षु ऐसा कहे कि हमें तो कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई शास्त्र फास्त्र में नहीं जाना है, हम तो बस स्वरूप चिंतन में लगे रहते हैं, तो मुमुक्षु की भूमिका में जहाँ खोज करनी है, जहाँ पहचान करनी है, ऐसी बात नहीं होती। हाँ, मुनियों को होती है, कोई तीव्र गति वाले सम्यक दृष्टियों को भी शास्त्र का ध्यान नहीं रहता है या बहुत कम रहता है, मुनियों को भी ज्ञान ध्यान, मैंने ज्ञान में शास्त्र अध्ययन है और ध्यान में स्वरूप चिंतन और एकाग्रता है स्वरूप की, फिर भी वहाँ ध्यान के साथ ज्ञान की प्रक्रिया का निषेध नहीं, यानी प्रक्रिया होती रहती है। शास्त्र अध्ययन साथ में भी करते हैं, अकेले भी करते हैं, मुनिराज भी, और सम्यक दृष्टि भी करते हैं। तो मुमुक्षु को तो शास्त्र का अभ्यास होवे ही नहीं, ये बात तो नहीं बनता है। प्रवचन सार में थोड़ा इस विषय पर ज्यादा वजन दिया है कुंकुंडाचार्य देव ने कि मुनिराज आगम चक्षु, आगम के चक्षु हैं वो, तो मैंने वो खुद ही आगम रचते हैं, खुद ही आगम पढ़ते हैं और यही आगम इनकी चक्षु हैं जिसके माध्यम से सभी पदार्थ को, सभी भावों को, स्वर को यथातथ्य रूप में वो देखते हैं। इसी बात है सामान्य अपेक्षा से तो शास्त्र अभ्यास चिंतन सहित होता है, शास्त्र अभ्यास के साथ साथ चिंतन होता ही है और तत्व का चिंतन, स्वरूप का चिंतन करने वाले को शास्त्र अभ्यास भी होता ही है, शास्त्र अभ्यास पूर्वक मैंने शास्त्र के साथ मिलान करते हैं, इस लाइन में, इस मार्ग में जो आगे बढ़े हैं, जो अपने से आगे हैं, उच्च भूमिका में जो हैं, उन्होंने क्या क्या बात कही अपने अनुभव से, उस बात से वो मेल खाता है कि अपना चिंतन नहीं मेल खाता है, उस बात को वो हमेशा मिलान करता है, टैली कर लेता है। ये होता ही है, नहीं हो वैसा नहीं बनता, ऐसा होता ही है, उसमें एक दूसरा भी बनता है कि किसी मुमुक्षु को अपना चिंतन के अनुकूल शास्त्र के या श्री गुरु के वचन के साथ मेल नहीं खाता है, तो उसके लिए यहाँ फिर इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन अपन विशेष विचार करें तो इसके एक दूसरी साइड है, एक अपेक्षा है, पड़खा ये भी है कि जहाँ भी अपना चिंतन के साथ शास्त्र वचन या गुरु वचन का मेल नहीं खावे तो इस विषय में खड़ा रह जाए, प्रश्न चिन्ह में रह जाए, जिज्ञासा में रह जाए, खोज में रह जाए कि दरअसल में क्या बात है, इस बात में वो खड़ा रह जाए। वो ऐसा कभी नहीं माने कि मेरा चिंतन सही है, भले ही शास्त्र में कुछ लिखा हो, भले ही गुरु ने ऐसा कहा हो, लेकिन मुझे तो ऐसा ही भाषित होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे तो ऐसा ही विचार में आता है, मेरा तो ऐसा ही निर्णय है। ऐसी गलती किसी मुमुक्षुओं को नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते बुद्धिमान आदमी हो या बुद्धि का विकास हो गया हो, खुलता है सूक्ष्म पढ़ते पढ़ते, तो इसमें ऐसा बन जाता है कि कई प्रकार की कल्पना हो जाती है, पदार्थ के निर्णय में कल्पना होने का यही कारण है कि अंतर खोज नहीं हुए, तो ये ओग संज्ञा के वश कल्पना होती है, या हमको यही विचार, कोई नई बात हमारे विचार में आई है ऐसा दिखाने के लिए, इस बात में से कौन सा नवीन चीज बताने लोगों को, ऐसी लोक संज्ञावश। नई बात ऐसा है कि सामान्य तौर से आम जनता को नई नई बात समझने की, सुनने की, पढ़ने की, देखने की, जानने की आतुरता रहती है, एक कौतूहल है। इस दूसरे जीवों के कुतूहल की पुष्टि के लिए और ऐसे दूसरे जीवों को कुतूहल में कोई नई बात दिखाने से अपना स्थान और अपना महत्व कोई बढ़ता रहेगा या अच्छा दिखेगा, ऐसा ही एक लोक संज्ञा का जो परिणाम है, ऐसा परिणाम के वश भी शास्त्रकार ने या अनुभवी पुरुष ने जो बात कही है, इससे कोई अलग उसको कल्पना हो जाती है कि मुझे तो ये नई बात यहाँ से दिखती है। तो इनके अनुसरण करने वाले व्यक्तिगत रूप से इनके श्रद्धालु जीव हैं, उनको ऐसा लग जाता है, देखिए ऐसी बात किसी ने नहीं बताई, ये नई बात बताते हैं। वो इनको भी कहेंगे आपने नई बात बताई, किसी ने नहीं बताई ऐसी नई बात, ऐसा करके। तो उनको तो जो लोक संज्ञा से ये कल्पना हुई थी, उस कल्पना के विषय में और रस आ जाता है, और वो नई नई कल्पना पैदा करने के लिए उसका अभिप्राय बन जाता है कि शास्त्र में पढ़ूं और उसमें से नई नई चीज, नई नई बात निकालते रहूं और लोगों को बताते रहूं। तो ये एक गलती नहीं करनी चाहिए कहीं भी। अनुभवी पुरुष क्या कहता है, उसकी गहराई में जो भाव भाषित होता है उसी के अनुकूल उसमें हमें आगे बढ़ना है, और ये अपना चिंतन, अपना अनुभव इसके साथ मेल खाना चाहिए। अगर कहीं भी मेल नहीं खाता है तो उनको वहां रुक जाना चाहिए, और कोई विशेषज्ञ हो, कोई ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, उनसे पूछें कि यहाँ ऐसी बात की है और हमको ऐसा नहीं भाषित होता है और हमको ऐसा भाषित होता है, क्या सही है या गलती है, तो गलती क्यों है, कैसे है, हमने ये गलती कैसे की, इसका भी उनको संशोधन कर लेना चाहिए। भले ही ज्ञानियों ने अनुभवियों ने सब बात बता दी है, लेकिन इस चीज का रिसर्च अपने में अपने आप को करना पड़ता है। कह दिया है और मान लिया, इससे कोई काम बन जाता है ऐसा नहीं कभी होता। ये तो एक सुविधा है कि ये बात बता दी कि ये रिजल्ट है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है और इसका ये रिजल्ट है, समाधान है। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे, ये तो अपने आप में ही निकालने की बात है, रिसर्च करने की बात है। उसके बिना कोई इससे लाभ हो जाता है, मान लेने से, कोई स्वीकार कर लेने से लाभ हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर का स्वीकार है। आज स्वीकार करेंगे, कल अस्वीकार भी कर देंगे, ये बात हो जाएगी।
लोक संधा की लाइफ
हाँ बहुत नुकसान कारक है, इससे बड़ा नुकसान है। इतने तीव्र परलक्ष है, लोक संज्ञा में तीव्र परलक्ष है और आत्म लक्ष्य से बहुत दूरी हो जाती है, स्वय लक्ष्य में बहुत दूरी हो जाती है, इसलिए वो उसका नुकसान बहुत है। तो लोक संज्ञावश या लोक संज्ञावश या कुसंग से दूषित या अवगुणी जीवों के प्रति प्रीति रखने से, रुचि रखने से दोष होता है, तो उसमें भी जो है कल्पना बन जाती है और चिंतमन है वो शास्त्राभ्यास पूर्वक अगर नहीं रहता है तो ये चिंतमन कल्पना में आगे ऐसे चले जाते हैं, ये कल्पना विहार हो जाता है इस जीव का। कहीं कल्पना में वो कल्पना के गगन में उड़ता है, वास्तविकता कहीं दूसरी जगह रहती है, खुद कहीं बहता है। चिंतन शास्त्राभ्यास पूर्वक होता है, ये सामान्य तौर से ऐसा ही होना चाहिए। अब विशेष अपेक्षा से सामान्यतया ऐसा होना चाहिए, विशेष रूप से ऐसा होना चाहिए। देखिए क्या मार्गदर्शन है, कोई जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, शास्त्र का अध्ययन करता है, चिंतन तत्व का करता है, तो इसमें सामान्य प्रकार तो ऐसा होता है, विशेष प्रकार से ऐसा भी होता है, ऐसा करके मैंने इस विषय को फाइनल कर देते हैं। विशेष अपेक्षा से अपनी परिणति जिसमें टिकती हो और अपने को जिससे विशेष लाभ होता दिखाई दे वह करना चाहिए। यानी किसी जीव को शास्त्र सहित चिंतन के साथ विशेष रस आता है, ये रस आने की बात है। परिणति कब टिकती है, किसी भी विषय में परिणति कब टिकती है, कि रस आवे तब। अगर रस निरस हो जाए तो परिणाम टिकेगा नहीं। तो परिणति टिकती है, इसका मतलब कि अपनी परिणति जिसमें टिके, ज्यादा जिसमें रस आवे उसमें ही लाभ होगा, रस आएगा उसमें लाभ होगा, वह करना चाहिए। वह करना चाहिए मैंने यदि शास्त्राभ्यास करने से, अब इस बात को खोलते हैं कि यदि शास्त्राभ्यास करने से अपने को निर्णय दृढ़ होता हो, विशेष रस आता हो, विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा प्रयोजन भूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए। शास्त्राभ्यास करना चाहिए इतना ही नहीं लिया, प्रयोजन भूत शास्त्राभ्यास करना चाहिए। कुछ चर्चा चली थी ना कल, 6 महीने में 608 जी जाते हैं और यहाँ कमी दिखती नहीं है, तो कोई खास है ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा कैसा बने। अनंत काल में अनंत गए और भी अनंत काल में अनंत जाएंगे और अनंत काल में अनंत जाएंगे और यहाँ तो कमी नहीं दिखेगी, ये बात कोई समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा अप्रयोजन भूत शास्त्राभ्यास नहीं करना। ऐसा प्रयोजन भूत शास्त्राभ्यास करना, इसमें दो बात है। मूल प्रयोजन भूत तो अपना स्वरूप है, मूल स्वरूप जिसकी पहचान करनी है वो है
मूल,
हाँ। और तात्कालिक प्रयोजन ये है कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से कैसे आगे बढ़े एक कदम स्वरूप की दिशा में, और स्वयं के मार्ग में हम जहाँ खड़े हैं वहां से कैसे आगे बढ़े, ये वर्तमान प्रयोजन है। तो ये बात दोनों साथ में रखनी है। मैंने स्वरूप का लक्ष्य और परिणाम में आगे बढ़ने का लक्ष्य दोनों साधक अवस्था में, मुमुक्षु की अवस्था में एक साथ रहता है, उसको यथार्थ लक्ष्य कहते हैं। ये तो सहज रहता ही है, वजन इतना नहीं जाना चाहिए परिणाम पर, लेकिन ख्याल नहीं रहे और जैसे कैसे कैसे भी चले जाएं परिणाम में, उसका ख्याल भी नहीं रहे, इसलिए ऐसा बनता ही नहीं, क्योंकि उस पर उसका ख्याल है, लक्ष्य है, ध्यान है कि हमारा परिणाम कहाँ कितना चलता है। यदि शास्त्राभ्यास करने से, दोनों बात लेंगे, अपने को निर्णय दृढ़ होता हो, विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि इस प्रकार में चिंतन वाला जो प्रकार है वो उसमें इतना रस नहीं आता हो और चिंतन में आगे नहीं बढ़ सकता हो, चिंतन छूट जाए और फिर अनेक प्रकार के विचार चालू हो जाए, चिंतन छूट जाएगा तो क्या हो के दूसरे दूसरे जो है अनेक प्रकार के कार्य के उपाधियां तो है तो उसमें विचार चला जाएगा। तो ऐसा अगर ऐसी योग्यता में कोई मुमुक्षु है, उनको ये कहते हैं कि तुम प्रयोजन भूत शास्त्र अभ्यास को विशेष करना, विशेष करना उतना ही नहीं लेकिन तू अपने आप को अवलोकन में लेना कि ऐसा करने से क्या निर्णय के विषय में मैं आगे बढ़ता हूँ, निर्णय की दिशा में मेरा कुछ कार्य होता है क्या। अन्वेषण काल है ये, मुमुक्षु का जो काल है उसको अन्वेषण काल कहते हैं। तो अन्वेषण काल में वो अन्वेषण की परिस्थिति में वो आगे बढ़ता है कि खुद नहीं बढ़ता है, उस बात को उसको देखते रहना चाहिए। और इस प्रकार का प्रयोजन भूत शास्त्राभ्यास करना चाहिए कि मेरे काम की चीज कहाँ आएगी, शास्त्र में अनेक विध शास्त्र में किस जगह पर मेरे काम की बात है, जहां जहां अपने काम की बात आवे उस पर उसका ध्यान जाना चाहिए कि ये मेरे प्रयोजन की बात आई। जैसे किसी को क्रोध की प्रकृति है, किसी को लोभ की प्रकृति है, ऐसे प्रकृति दोस्तों सभी मनुष्य को होता ही है, किसी को जिद की होती है जिसको मायाचार कहते हैं, किसी को मान की होती है, मान बढ़ जाता है, क्रोध मान माया लोभ चार की चौकड़ी है, किसी ने किसी प्रकृति तेज होती है किसी को, तो उनको ख्याल होना चाहिए कि मेरा अवगुण है, मेरा दोष है, वो इस प्रकार का ज्यादा होता है या तीव्र हो जाता है, सहज में प्रकृति बंधी हुई है हो ही जाएगा। तो इस विषय में कहां कहां शास्त्र में कैसे कैसे तरीके से किस किस विधि से, किस पद्धति से, किस न्याय से, किस युक्ति से, और स्वभाव की कैसी कैसी बात करने की शैलियों से, स्वभाव की बात तो है लेकिन शैली बहुत है इसकी, अनेक ज्ञानियों की अनेक शैली होती है, कथन करने की पद्धति को शैली कहते हैं। तो किस किस पद्धति में, किस पद्धति में मुझे चोट लगती है, किस पद्धति में, किस शैली में मुझे रस आता है, किस कथन पद्धति की असर मेरे परिणाम पर बहुत आती है, इनका ध्यान, इसका ध्यान कौन रखेगा, वो तो स्वयं ही सतर्क होगा, जागृत होगा तो खुद ही इसका ध्यान रखेगा, वरना कौन रखेगा। तो शास्त्राभ्यास जो है उसमें अपने को कहाँ लाभ होता है, कहाँ लाभ अपने को होता है, ये अपने लिए प्रयोजन है। जहाँ अपने को लाभ होए वो बात अपने लिए प्रयोजन है, और अन्वेषण की खोज की दिशा में कौन सी बात कहाँ ठीक कही है, किस तरह ठीक कही है, किसने ठीक कही है, किस बात किस पद्धति में मुझे है? बात तो सबों ने, सबों का तात्पर्य एक है, मैंने जो थीम है सब्जेक्ट है वो तो एक ही है, लेकिन कथन पद्धति अलग अलग है। जैसे श्रीमद जी ने ये कहा स्वरूप निर्णय के विषय में कि अस्तित्व ग्रहण नहीं किया, अनंत काल में जीव ने अस्तित्व ग्रहण नहीं किया। तो यही बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट में ऐसा लिया कि ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभावी आत्मा को ग्रहण करना। तो अस्तित्व ग्रहण करना है, वो ज्ञान लक्षण में से अपना जो अपनत्व है, हस्ति है, मौजूदगी है, वो ज्ञान में से पकड़ना है। दोनों साथ होगी साथ में, वहां अस्तित्व से लिया, वहां ज्ञान से लिया। हम कोई अस्तित्व से लेवे और कार्य पद्धति नहीं समझे कि हमको तो अस्तित्व वाली बात बहुत बैठ जाती है, तो उसको मिलान करना चाहिए, शास्त्र के साथ मिलान करना चाहिए। जब आचार्य महाराज ने यही बात की तो वास्तव में इसका प्रयोग किस तरह है, और उसके प्रयोग में जाकर के फिर कैसे अस्तित्व ग्रहण करें या कैसे ज्ञान लक्षण से पहचाने, इस बात को बराबर सही पद्धति से अंगीकार कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें हैं कि एक ही विषय में अनेक विध शैली है, फिर भी कार्य पद्धति एक सी ही होती है, दो मार्ग नहीं, दो उपाय नहीं, दो कार्य पद्धति नहीं, कथन पद्धति अनेक विध है। और जब कथन पद्धति अनेक विध है और कार्य पद्धति एक विध है, तो जब बात समझ में आती है तब बहुमान होता है कहने वाले के प्रति कि अरे इस बात को इस ढंग से भी कह सकते हैं, इस पद्धति से भी कह सकते हैं, इनकी जो सामर्थ्य है कहने की बहुत बढ़िया है, ऐसा ध्यान में आए बिना नहीं रहता। तो सभी शैलियों जो ज्ञानियों की हैं कथन पद्धति, उस पर बहुमान आता है, कहीं किसी का न पक्ष होता है न कहीं किसी पद्धति का तिरस्कार भी होता है कि ऐसा क्यों कह दिया, इस ढंग से क्यों कहा, इस ढंग से किसी को नुकसान भी हो सकता है। अरे नुकसान होगा, इसको होगा, तुझे क्या होता है, तू तेरे प्रयोजन से शास्त्र अध्ययन करता है या दूसरे को क्या होगा नहीं होगा इस प्रयोजन से करता है। तो ये बात इस तरह विशेष है कि यदि शास्त्राभ्यास करने से अपने को निर्णय दृढ़ होता हो और विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा प्रयोजन भूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए, क्योंकि उसका चिंतन कम चलता है। ऐसी कोई योग्यता है कि चिंतन कम चलता है, और चिंतन में बैठे और शास्त्र को छोड़ दें तो उसका विचार कहीं और जगह चले जाता है। तो उसके लिए शास्त्राभ्यास, और वो भी प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास, यही इसके लिए ठीक है, यही एक मार्गदर्शन है उसको, कि ऐसी योग्यता वाले मुमुक्षुओं को प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास में विशेष रूप से रहना चाहिए, यानी विशेष समय व्यतीत करना चाहिए, ऐसा होना है। कभी तो किसी को ऐसा होता है कि एक अपनी रुचि का विषय आया शास्त्र में से, जो अपनी रुचि को पुष्ट करता हो, तो किसी को ऐसा बनता है मुख को लिखें तो उनको रस और आवे, लिखने से रस बढ़े, तो लिखें तो कोई दोष नहीं है, पढ़े तो दोष नहीं है, चिंतन करे तो दोष नहीं है, बात यह होनी चाहिए कि उसको रस आना चाहिए। अगर रस नहीं आता है तो उसको ये बाह्य क्रिया हो जाएगी, शुष्क ज्ञान की क्रिया हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान की ज्ञानाभ्यास है ना, तो ये शुष्क हो जाएगा, निरस हो जाएगा, और इसमें से लाभ होना तो एक साइड में रह गया, लेकिन शायद आगे जाके नुकसान भी हो सकता है, और प्रायः नुकसान हो जाता है, यही बनता है। तो इसलिए ये जो मार्गदर्शन है वो तो बहुत ध्यान में रखने लायक है। जो शास्त्र अभ्यास करते हैं और चिंतन करते हैं, ऐसे मुमुक्षु के लिए यहाँ जो गाइडेंस दिया, तो उसमें बहुत बात स्पष्ट कर दी है कि तुम अपने आप के परिणाम को देखो, मिलान करो और बराबर देख करके क्या करना क्या नहीं करना उसकी पसंदगी करो। ऐसा ही कोई ज्यादा चिंतन करता है, शास्त्र में बढ़ता है और इसकी प्रसिद्धि अच्छी हो और अच्छा गिना जाता है इसलिए मैं भी चिंतन करूंगा, शास्त्र कम पढ़ूंगा, ऐसा नहीं चलता इसमें। और कोई शास्त्र बहुत पढ़ता है और चिंतन कम करता है, उनका कोई अच्छा दिखाव लगता है तो खुद ही इसके पीछे लग जाए या किसी और का अनुसरण कर ले, ये कार्य पद्धति नहीं है। अपने में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे रस आता है कैसे रस नहीं आता है, ये बात को मैंने एक अवलोकन की साइड इसमें आएगी इनडायरेक्टली। ये अवलोकन करते जाओ, चिंतन करो या शास्त्र अध्ययन, अवलोकन करते जाओ, ये बात का निर्देश कर दिया इसमें, ये बात है।
देव श्री मंदर भगवान जय ओ परम कृपा।